Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Ye is kitab ki ayat hai. Jo apna muda saaf saaf bayan karti hai. Yani kitab Quran ko kisi aur dictionary ki zarurat nahi padti samajhne ke liye. Siwa sunnat ki dictionary ke. Humne ise nazil kiya Quran banakar arbi zuban mein taaki tum ahle arab isko achhi tarah samajh sako. Kya pata chala? Kitab ko apni zuban mein samajhna lazim hai. Chunki arbon mein utri to arbi mein thi to urdu wale logon ko urdu mein padhni padegi, english walon ko english mein padhni padegi, otherwise is kitab ka maqsad hasil nahi hoga. Ae nabi, humne quran ko aapki tarah wahi karke behtareen pehraye mein waqiat aur haqaiq aap par bayan kiye, warna isse pehle to aap in cheezon se bilkul hi bekhabar the. Ye us waqt ka zikr hai jab yusuf alaihis salam ne apne baap se kaha, Abba Jan, mene khwab dekha hai. Ki 11 sitare hain aur suraj aur chand hain aur wo mujhe sajda kar rahe hain. Jawab mein unke baap ne kaha, beta, apna ye khwab apne bhaiyon ko na sunana, warna wo aapko takleef dene par aa jayenge. Haqeeqat ye hai ki shaitan aadmi ka khula dushman hai aur aisa hi hoga jaisa ki aapne khwab dekha hai. Aapka rab aapko apne kaam ke liye muntakhib karega aur aapko baaton ki teh mein pahunchna sikhayega. اور آپ کے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا یقیناً آپ کا رب علیم اور حکیم ہے ہائی لائٹ کیجئے حضرت یعقوب کی یہ پیاری سی نصیحتیں آیت 6 میں جو انہوں نے کی ہیں یہ ہے آج کے ویسٹرن باپ کو اپنے بیٹے کو کرنے والی نصیحت کہ آپ کو بھی بیٹا اللہ چنے گا آپ کو بھی اللہ حکمت دے گا فراست دے گا معاملہ فہمی دے گا انسان جتنے بھی اوپن ماحول میں رہتا ہے نا اتنا اس کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے نیرو برتن ہوگا تھوڑی سی چیز ڈالے گی برتن بھر جائے گا بڑے برتن میں جتنا بھی ڈالتے جائیں جذب کرے گا وہ بچے جو گھٹے ہوئے تنگ ماحول میں رہتے ہیں نا ان کی سکلز گھٹ جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں جو لوگ پیدا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں گیجٹس پکڑا دیے جائیں کمپیوٹرز پہ وہ کام کریں اور جہاں ہر چیز کو اوپن کر کے اور کہا جائے کہ یو آر کانفیڈنٹ اور یو آر ایٹ یور اون ایسی اولادیں اور ایسی نسلیں مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں حقیقت میں ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے بچے کو آپ جتنا زیادہ رسک فری پالیں گے نا وہ اتنا بریو ہوگا اتنا طاقتور ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہاں حضرت یوسف کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہم نے پڑھا چند باتیں اس میں سے نوٹ کیجیے پہلی بات یہ کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے حضرت یوسف نے اپنا اصلی خواب باپ سے شیئر کیا اسی طرح آج ہمارے بچوں کو اپنے ڈریمز اپنے ویوز اپنی پسند اپنی ناپسند ہمارے سے شیئر کرنے کا حق ہونا چاہیے کیونکہ جب بچے ماں باپ سے باتیں نہیں کرتے ماں باپ کے ساتھ باتیں نہیں شیئر ہوتی ان کی تو پھر وہ دوسروں سے کرتے ہیں پھر باہر جاتی ہیں پھر خرابیاں ہوتی ہیں تو آپ کا میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اپنے بچوں کے ساتھ ون آن ون بیس پہ تعلق رکھیں میں اکثر ماؤں کے نصیحت کرتی ہوں اسی بات کی کم از کم 15 منٹ آپ نے اپنے ہر بچے کو الگ سے دے لیں مثلا اگر آپ کے 4 بچے تو آپ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ کر کے 1 گھنٹہ کیسے سپینڈ کریں 1 گھنٹہ منع کے ساتھ 1 گھنٹہ چننے کے ساتھ اور 1 گھنٹہ منی کے ساتھ اور 1 چننی کے ساتھ انسان جو ہے نا اس کے اندر انس ہے جانور ہو یا انسان ہو بچہ پیار چاہتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو الگ سے ٹائم دیتے ہیں ان کو لمس کرتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں بہت چھوٹے بچے سے یہ شروع کریں پیار کریں اس کے بالوں کو چھوئیں اس کے پاؤں کو چھوئیں آپ فیل کریں گے کہ وہ آپ کی قربت پاتا ہے اور ہم تو اس کو اتنے کپڑے پہنا دیتے ہیں وہ نیچے گر بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اوپر کپڑے اتنے اور پھر مائیں ان کے ہاتھ باندھتی ہیں آپ کبھی ناروے میں دیکھا کریں جب بچے باہر جاتے بلیو می وہ پلاسٹک کے بیگ لگتے ہیں ایک بچہ ایک دفعہ سو ٹیبل پہ ماں نے اس کو رکھا اسکول کے ٹیبل پہ اس کو پیک بک کر چکی تھی ماں ادھر ہوئے بچہ پورا لڑک پڑک کے نیچے گرا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ کیونکہ وہ چاروں طرف فارم کی جیکٹ اور ہاتھوں پہ گلاس پہناتی ہیں بال کانوں پہ انگلیوں پہ چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کیا کچھ پہنا کے ان کو بڑھاوے سے بنا دیتی ہیں تو وہ بچوں کو کچھ نہیں ہوتا اپنے بچوں کے ساتھ بے تکلفی کریں یہ آج کے دور کا ایک بہت مسئلہ وہ کب جاگتے ہیں وہ کب سوتے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہیے آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بیچ میں ہماری ایک لائن کھنچ گئی माइंड ना कीजिएगा, मैं नहीं कहती कि ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन उनके रवैये से लगता है कि वो आपको कुछ नहीं समझते। इनको क्या समझ आता है? अम्मी इनको क्या आती, इंग्लिश आती नहीं, और अब्बू इनको क्या आता, इनको तो कंप्यूटर चलाने ही नहीं आता, और आपको तो आईपैड ही नहीं यूज करना आता, और आप तो बस कभी नहीं सीखेंगी फोन, और आप तो हमेशा गलत ही बटन दबाती है। अंदर से एक ऐसी रौनक है। मुझे यूथ बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते होंगे, लेकिन जो बच्चे आपको आगे से रिस्पॉन्स ना दे माजरत के साथ, मैं उसको एटीट्यूड कहती हूँ कि आप इस काबिल नहीं है कि आप उर्दू बोलने वाले से ठीक बात करें। एक गैप डाल दिया, लैंग्वेज बैरियर है, बच्चे उर्दू नहीं समझते। बच्चे आपको कब अपने ख्वाब सुनाएंगे, कब शेयर करेंगे, जब आपकी जुबान उनकी एक होगी। एक कमी जो मैंने खुद पिछले 15 साल में ऑब्जर्व की है, जो वेस्ट में रहने वाले पेरेंट्स की हुई, अब गौर करो इनके मैं जो बात कहने लगी हूँ, माँ बाप उर्दू बोलते हैं या कुछ भी, मैं इस वक्त उर्दू के हक में नहीं हूं, मैं बीच के कम्युनिकेशन की बात हूं। बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो माँ बाप समझते हैं, माँ बाप उर्दू बोलते हैं तो बच्चे उर्दू समझते हैं, लेकिन बच्चे उर्दू बोल नहीं सकते, माँ बाप इंग्लिश बोल नहीं सकते। क्या आज बहुत सारे घरों में ऐसे नहीं है? हुआ क्या कि बच्चा इंग्लिश में स्कूल की बातें सुनाता रहा, माँ उर्दू बोलती रही, बच्चे को माँ की उर्दू समझ आ गई, लेकिन वो जवाब इंग्लिश में देता रहा, माँ को इंग्लिश सुननी आ गई, बच्चे को उर्दू सुननी आ गई। इट्स नॉट द राइट वे। देखिए ये जो कोई कहता है ना उर्दू इज अ डाइंग लैंग्वेज, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है खतरे का। मैं नहीं कहती कि उर्दू अच्छी है और उर्दू पढ़ने से आपके बच्चे नेक हो जाएंगे, लेकिन मानिए ना मानिए, हम सब जिस खमीर से उठते हैं हम उसी में क्लोजनेस फील करते हैं। कभी अपने बच्चों को अपनी जुबान से ना काटें। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो ख्वाब दिखाया, उस ख्वाब की ताबीर कितनी खूबसूरत की बाप ने, कि बेटा अल्लाह आपको बहुत बड़ा बनाएगा। आज वल्लाह ही कसम नहीं खाना चाहती, लेकिन आज हमें अपने बच्चों को यही ड्रीमिंग करवाने की जरूरत है। उठते बैठते प्यार से, जवान होते छोटे बड़े बच्चों को यही कहें जो हजरत याकूब ने कहा कि वकजालिका यजतबी का रब्बुका, मेरा ये बच्चा है वो अल्लाह इसको देखना चुनेगा। अपने बच्चों का मोरल बुलंद करें। बाज दफा हम बचपन में चूंकि बहुत लाड देख चुके होते हैं, फिर हम थक चुके होते हैं और वो हमारे हाथ से निकल गए। इधर वो जवान हुए झूम के उन पर टीन एज आई, उधर वो हमारे हाथों से निकल गए, तो फिर अखीर उठते बैठते हम उनको सलवातें सुनाते हैं। तुम बिगड़े हुए, नमाज पढ़ लिया करो, कपड़े ठीक करो, ढंग से पहनो, सही बैठो, इधर रहो, साथ बैठा करो, चलो हमारे साथ। फिर वो जो 2-4 कड़वे जुमले बोल के माहौल खराब करके घर से निकलते हैं, तो बच्चे भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं है। इसको चेंज करने की जरूरत है। अपने बच्चों को रोज 15 मिनट माएं ख्वाब दिखाएं, हर 15 मिनट में किसी एक मुस्लिम हीरो से उनको मिलाएं, फिर आप देखिए आपके बच्चे कैसे चेंज लाते हैं। स्कूलों में कितनी कुदे रहते हैं बच्चे, और कितना कुछ पढ़ाना होता है स्कूल वालों ने। आप माँ वो सिखा सकती हैं जो दूसरे नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को ड्रीमिंग करवाएं। फिर युअल्लिमु का मिन तावील इल हदीस, ये मेरा बच्चा बहुत जीनियस बनेगा, इसको देखना अल्लाह ताला वो ब्रेन देगा कि जिससे होगा। आप अपने बच्चों की स्किल्स को आगे लाएं। आप समझते हैं ना आपका बच्चा 8 साल का है, तो बिलीव मी आज के दौर में आप उसको कम से कम 10 साल का सोचें, और आपको लगता है आपका बच्चा 12 साल का है, आप उसको 14-15 का सोचें, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा उनकी ग्रूमिंग हो रही है। दुनिया ने तो उनको वक्त से पहले वो सब दुखा और सुना दिया जिसकी जरूरत उनको कहीं जाके शादियों के बाद पड़ती, तो आपके बच्चे छोटे नहीं है। आज हमें जरूरत है इस बात की कि उनको ऊपर लेके चलना है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक आइडियल बाप की सूरत में, और मैं कहती हूँ आज के बाप अगर याकूब अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल बना लें तो 50-60 साल की बात है, एक जनरेशन गुजरेगी तो उम्मत मुस्लिमा का नसीब ऐसे ही बदल जाएगा जैसे हजरत यूसुफ और याकूब और उनके हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम इन चीजों को लेकर चलें। फिर उसके बाद देखिए कि इसमें इन्होंने अपने बच्चों को ये क्यों कहा कि अपना ख्वाब दूसरों को न सुनाना, और आने वाले किसी खतरे से डराना और आगाह करना ये माँ बाप का फर्ज है। आप अपने बच्चों से जितने मर्जी बेतकल्लुफ हो, जितना मर्जी आप उनके साथ अच्छा मामला करें, लेकिन एक डिस्टेंस जरूर रखें। आप का अपर हैंड है, अगर वो 49 है तो 51 पे रहे। आज ये भी एक बहुत मसला हो गया, हमने बिल्कुल बराबर पे खड़ा कर दिया, बल्कि ऊपर है बच्चे, वल्लाह ही गलत ना मैं कहूं तो। आज हम अपने बच्चों से डरते हैं, बच्चे हमसे कम डरते हैं। आज हम सारा दिन उनको खुश करना चाहते हैं, पहले बिल्कुल अपोजिट हालात थे। मैं इसको पेरेंटिंग में नहीं लेके जा रही क्योंकि वहां हमने बहुत डिटेल से इसको हर एंगल से देखा हुआ, लेकिन फिर वही कहूंगी कि आज के लाइफस्टाइल में ये लाजिम है कि आप अपने आप को बच्चों से एक हैंड ऊपर रखें। कुछ भी है, एक बच्चा ऐसी कोई बात कर रहा था, दिस एंड दैट, अम्मी दिस वो, तो मैंने एक जुमला बोला उसके सामने, बेटा आप कितने भी सच्चे क्यों ना हो, कितने भी स्किल्ड ना हो। मैंने उसकी माँ से पूछा, जब ये पैदा हुआ था आप कितने साल की थी? कहने लगी 18 साल की थी, पहला बच्चा था उनका। मैंने कहा बेटा यहां बैठ के इस बात पे गौर करो, आप अपनी अम्मी से 18 ईयर्स छोटे हैं। क्या ये बात काफी नहीं है आपकी अम्मी के अकलमंद होने की या आपसे बड़े होने की? बच्चा खामोश हो गया। अपने बच्चों को एहसास दिलाएं कि हम आपसे 15-20 साल पहले इस दुनिया में आए थे। जब हम बुद्धू बन जाते हैं और हम भी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, हाँ हमें इंग्लिश नहीं आती इनको आती है, हमें कंप्यूटर नहीं चलाता आता इनको आता है, ये वेस्टर्न स्कूलों में गए हम तो बेचारे पता नहीं कि गवर्नमेंट के स्कूलों में गए, इस कॉम्प्लेक्स को निकाल दें तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे फायदा होगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अब आगे से असल किस्सा शुरू होता है, और वो क्या है, इस कालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना। हकीकत ये है कि यूसुफ और इनके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानी है। ये पूछने वाले कौन थे? मदीना के लोग। उन्होंने अल्लाह के नबी को आजमाना चाहा था कि भला ये नबी हैं कि नहीं, क्योंकि हजरत यूसुफ का किस्सा मक्का में कोई नहीं जानता था। अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल करके उनको यकीन दिला दिया कि ये अल्लाह के नबी हैं। फरमाए इसमें निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इनके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं। ये गुमान हर बच्चे को होता है। देखिए आपका जब सेकंड बच्चा होगा ना, तो उसको पहले बच्चे को फील होना शुरू हो जाएगा कि ये मेरे जगह पे आ गए। आप नोट करें, जब घर में छोटा बच्चा आता है ना, तो पहला बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको खींच के गोद से निकाल के खुद जाके बैठ जाएगा, अक्सर उसका फीडर लेके पीना शुरू हो जाएगा, माँ उसको पकड़ेगी तो बच्चा रोता है। ये एक फितरी सी बात है। हजरत यूसुफ के जो दूसरे भाई थे उनको जो बात लगी वो हकीकत नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि अब्बा हमसे ज्यादा प्यार नहीं करते, हालांकि हम एक पूरा गिरोह हैं। ये सोचते कि अब्बा को इनसे प्यार क्यों है। आज भी देखिए, जब आपको कभी ये लगे ना कि मेरे से ज्यादा अम्मी दूसरी बहन को प्यार करती हैं या मेरे से ज्यादा अब्बू दूसरे भाई को प्यार करते हैं, तो ये सोचिए कि उसमें खूबी क्या है। आप खुद माएं, आप इस बात की गवाही देती हैं ना, सारे बच्चे आपके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस बच्चे में दिल पड़ा रहता है? जो बाअदब है, जो बानसीब है, जो अच्छी तरह बात करता है, टिकेट अच्छे हैं उसके, तो हमेशा इंसान अपने एटीट्यूड और अपने रवैयों से मोहब्बत लेता है। लेकिन शैतान उस वक्त दूसरों को सामने खड़ा कर, बिल्कुल वही कहानी है जो हाबील और काबील की थी, कि अपने ऊपर नजर डालने की बजाय दूसरी की तरफ कर दी। आगे आप इनका एटीट्यूड खुद ही देखेंगे कि उनको इन सारी चीजों में क्या वजह थी कि वो इस चीज को महसूस करते हैं, क्योंकि उनका अपना अखलाक अच्छा नहीं था। सच्ची बात यह कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। हाईलाइट करें, आप इस इंग्लिश को कैसे कहेंगे? माई डैड इज स्टुपिड। मैंने ये जुमला एक बच्ची के मुंह से सुना है, माई मॉम इज स्टुपिड। तो माँ को चूंकि इतना लगता ही नहीं ये बुरा लफ्ज है, वो कहती है सो के को अच्छा ही लफ्ज बोला होगा, इंग्लिश का लफ्ज है। यकीन करें, ये जरूरत नहीं देनी चाहिए, माई मॉम इज सो मीन। ये बच्चे लफ्ज बोले तो ये खतरा, ये बदबख्त बच्चे होते हैं। क्योंकि बच्चा तो माँ बाप को क्या कर सकता है कि वला तकुल लहुमा उफ, उफ भी नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी दुनिया के लीडर बन जाएं, माँ बाप के लिए आप बच्चे ही हैं। तो लिहाजा ये उनकी अपनी आदतें बता रही हैं कि वो कैसे थे। सच्ची बात तो ये कि हमारे अब्बा जान तो बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसको कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन जाना। प्लान क्या किया? यूसुफ को कत्ल कर दो। क्यों? ताकि फिर बाप हमसे ज्यादा प्यार करे। बाप की मोहब्बत उससे दूर करो ताकि वो हमसे प्यार करे। आज भी बहुत सारे लोगों को यही गलत फहमी है, और कई लड़कियां शादी के बाद ससुराल में जाकर यही जुल्म करती हैं, शौहर की मोहब्बत लेने के लिए उसको उसके घर वालों के खिलाफ करना चाहती हैं। और वो सोचती हैं सास को बुरा बना दो, नंद की बुराइयां करो, तो मेरा शौहर ना माँ को मिले ना बहन को मिले, वो बस सारा मेरा ख्याल रखे। तो याद रखिए, नफरतें देके कभी मोहब्बत नहीं मिलती। दूसरी बात, आप देखिए इस जुमले को हाईलाइट करके 3 सेकंड तक इस पे गौर करते हैं, और वो क्या कि इतना बड़ा जुर्म के भाई को कत्ल करें तो इसका बोझ दिल पे पड़ेगा, तो क्या बड़ी बात है। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालेहीन। क्या फर्क पड़ता है, भाई को कत्ल करो, बाद में जाके नेक बन जाना, हज कराना, उमरा कर लेना, तौबा कर लेना। आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है, बड़े बड़े गुनाह करने के बाद क्या सोचते हैं, चलो बाद में नेक बन जाएंगे। कई लोग हैं, कुछ नहीं होता, अब रमजान आने वाला एक ही बार नमाजें शुरू करेंगे। अब रमजान में बहुत पढ़ ली, देखिएगा जैसे चांद डूबता है इस तरह रमजान के बाद लोग भी डूब जाते हैं। मस्जिदें खाली हो जाती हैं, नमाजी कम हो जाते हैं, तो मुस्तकबिल में नेक बनने की नीयत से आज गुनाह करना ये भी एक शैतानियत की बात है। फिर इनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे एक अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई आता जाता काफला इसको निकाल ले, क्या पता चला कि जहां बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हों वहां अल्लाह ज्यादा बुरों में कुछ कम बुरे को पेश कर देता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि प्लान्स क्या किए हजरत यूसुफ के कत्ल के और बात क्या कर रहे हैं, आप जरा सुनिएगा, बाप के सामने आ रहे हैं कि क्या डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उनकी।